नमस्कार, आकाशवाणी दिल्ली से प्रादेशिक समाचार के साथ मैं जया भारती। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने राजधानी में जिलों की संख्या 11 से बढ़ाकर 13 करने की घोषणा की। दिल्ली सरकार ने 1984 के सिख दंगों से पीड़ित 36 परिवारों के निकटतम परिजन को सरकारी नौकरी के नियुक्ति पत्र सौंपे। दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड ने साकेत जी ब्लॉक लाजपत नगर कॉरिडोर पर निर्माण कार्य शुरू किया। नमो भारत ने परिचालन के 2 वर्ष पूरे करते हुए 2 करोड़ यात्राओं की उपलब्धि हासिल की। और दिल्ली पुलिस ने ऑपरेशन साइबर हॉक के दूसरे चरण के अंतर्गत 2800 से अधिक लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने घोषणा की है कि राजधानी में जिले अब 11 से बढ़ाकर 13 कर दिए जाएंगे। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्रीमती गुप्ता ने बताया कि 15 दिनों के भीतर राजपत्र अधिसूचना जारी किया जाएगा। इस संबंध में आदेश इसी महीने लागू होगा। उन्होंने बताया कि नए जिलों के निर्माण के लिए 25 करोड़ का बजट तैयार किया गया है। उन्होंने कहा कि यह निर्णय लोगों को बेहतर शासन व्यवस्था देने और सुविधाओं के आसान पहुंच के लिए किया गया है, जिससे प्रशासन तथा नागरिकों के बीच बेहतर तालमेल होगा। दिल्ली सरकार ने आज 1984 के सिख दंगों से प्रभावित 36 परिवारों के निकटतम परिजन को सरकारी नौकरी के नियुक्ति पत्र सौंपे। इस अवसर पर मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि यह केवल नौकरी देने का कार्यक्रम नहीं, बल्कि उन परिवारों के लंबे इंतजार और संघर्ष को सम्मान देने की एक ठोस पहल है। उन्होंने कहा कि कई नियमों और कानूनों को आसान बनाकर दिल्ली सरकार ने इन परिवारों का दर्द कम किया है और यह पक्का किया कि इन परिवारों को रोजगार मिले। श्रीमती गुप्ता ने कहा कि सरकार द्वारा दी गई नौकरी इन परिवारों को आर्थिक संबल प्रदान करने के साथ साथ एक सम्मानजनक और सुरक्षित जीवन की दिशा में मजबूत आधार देती है।
84 के दंगों के परिवारों के जख्मों पे मरहम लगाने का काम दिल्ली सरकार ने किया और बेहद ही सारे नियमों को सरलीकरण करके इन परिवारों के दुख दर्द को कम करके उनके परिवार के एक जन को नौकरी देने का काम दिल्ली सरकार ने किया।
वहीं दिल्ली सरकार में पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने कहा कि इतिहास में पहली बार उम्र और शिक्षा की कोई शर्त रखे बिना इन पीड़ित परिवारों को नौकरियां दी गई हैं।
41 साल बाद ये समय आया है। हमने अभी जब से सरकार आई है तब से हम यही कर रहे हैं। इसके अंदर सभी जो कानून कहते थे उनका सरलीकरण किया गया। इतिहास में पहली बार हुआ है बिना योग्यता एजुकेशन की। अगर किसी की एज 56-57 साल होगी और एक साल नौकरी बची है तो उनको यह भी विकल्प दिया गया कि अपनी थर्ड जनरेशन को, ताकि बच्चों को नौकरी दे दें ताकि उनको पूरी टर्म मिले।
दिल्ली विधानसभा अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता ने आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात कर उन्हें शताब्दी यात्रा कॉफी टेबल पुस्तक भेंट की। श्री गुप्ता ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में भारत आज लोकतांत्रिक मूल्यों, सुशासन, प्रौद्योगिकी और वैश्विक सहयोग के एक नए मानक गढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री के मार्गदर्शन में एक समृद्ध, आत्मनिर्भर और विकसित भारत के संकल्प को साकार होते देखना अत्यंत प्रेरणादायी है। श्री गुप्ता ने कहा कि भेंट की गई पुस्तक वर्ष 1925 से 2025 तक भारत की संसदीय यात्रा का ऐतिहासिक दस्तावेज है और केंद्रीय विधानसभा के प्रथम भारतीय नव निर्वाचित अध्यक्ष वीर विट्ठल भाई पटेल को समर्पित है। स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग ने आज नई दिल्ली में महाकवि सुब्रमण्यम भारती की जयंती के अवसर पर भारतीय भाषा उत्सव 2025 का आयोजन किया। शिक्षा मंत्रालय ने बताया कि इस वर्ष का विषय है भाषाएं अनेक भाव एक। इस अवसर पर विभाग के सचिव संजय कुमार ने सुब्रमण्यम भारती के जीवन और आदर्शों का स्मरण किया। उन्होंने स्वाधीनता, सामाजिक सुधार, बहुभाषावाद के प्रति उनके योगदान का उल्लेख किया। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के दृष्टिकोण का उल्लेख करते हुए उन्होंने विद्यार्थियों और शिक्षकों को कई भाषाओं को अपनाने, अपनी शब्दावली को समृद्ध करने और स्पष्टता तथा सटीकता के साथ संवाद करने के लिए प्रेरित किया। देश के स्कूलों में बहुभाषावाद और सांस्कृतिक समरसता को बढ़ावा देने के लिए इस महीने 4 से 11 दिसंबर तक संवादात्मक गतिविधियों के आयोजन के साथ सप्ताह व्यापी समारोह का आयोजन किया गया। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड DMRC ने आज साकेत जी ब्लॉक लाजपत नगर कॉरिडोर पर निर्माण कार्य प्रारंभ किया है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि यह फेज 4 के प्राथमिक कॉरिडोरों के बाद का पहला नया खंड है जहां भौतिक कार्य की शुरुआत की गई है।
दिल्ली मेट्रो ने बताया कि ये कॉरिडोर एक एलिवेटेड कॉरिडोर होगा जिसमें कुल 8 मेट्रो स्टेशन होंगे। इन स्टेशनों में लाजपत नगर, एंड्रूजगंज, ग्रेटर कैलाश वन, चिराग दिल्ली, पुष्पा भवन, साकेत डिस्ट्रिक्ट सेंटर, पुष्प विहार तथा साकेत जी ब्लॉक शामिल हैं। दिल्ली मेट्रो ने बताया कि गोल्डन लाइन कॉरिडोर दक्षिण दिल्ली में एक महत्वपूर्ण कड़ी है जिसे संयोजकता बढ़ाने और मौजूदा मेट्रो लाइनों के साथ सहज एकीकरण प्रदान करने के उद्देश्य से तैयार किया जा रहा है। प्रादेशिक के लिए विशाल शर्मा।
नमो भारत ने आज परिचालन के 2 वर्ष पूरे करते हुए 2 करोड़ यात्राओं की उपलब्धि हासिल की है। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम NCRTC ने बताया कि अक्टूबर 2023 में इसके परिचालन के आरंभ के बाद से नमो भारत कॉरिडोर पर यात्रियों की संख्या में लगातार बढ़ोतरी देखी जा रही है।
NCRTC ने कहा कि वर्तमान में औसतन 55,000 से 60,000 लोग रोजाना नमो भारत ट्रेन में सफर कर रहे हैं और जल्द ही पूरे कॉरिडोर के परिचालन के साथ यह रोजाना लाखों यात्रियों को सेवा प्रदान करेगी। यात्रियों की बढ़ती मांग को देखते हुए NCRTC ने नमो भारत ट्रेन का आवागमन 15 मिनट से घटाकर 10 मिनट कर दिया है और भविष्य में इसे और कम करते हुए 3 मिनट तक करने का भी प्रबंध है। NCRTC ने कहा कि यह उपलब्धि इस परिवहन साधन के प्रति लोगों के बढ़ते विश्वास को दर्शाता है। प्रादेशिक समाचार के लिए दृष्टि पुन्यानी।
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने जनगणना 2027 के लिए 11,718 करोड़ रुपए के बजट को मंजूरी दे दी है। सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आज नई दिल्ली में संवाददाताओं से कहा कि जनगणना 2027 दो चरणों में कराई जाएगी। श्री वैष्णव ने बताया कि मंत्रिमंडल ने कोयला संपर्क नीति कोल सेतु में सुधार को भी मंजूरी दे दी है। उन्होंने कहा कि भारत कोयला क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ रहा है।
2016 में कोल सेतु के माध्यम से जो नॉन पावर सेक्टर्स हैं, उसको एक बहुत ही ट्रांसपेरेंट मेथड से ऑक्शन करने की व्यवस्था लाई गई थी। अब उसमें एक सेकेंड बड़ा रिफॉर्म किया गया आज। अब इसमें इररिस्पेक्टिव ऑफ द एंड यूज एनी यूजर कैन पार्टिसिपेट इन द कोल सेतु विंडो। अब कोल के एक्सपोर्ट को भी प्रमोट किया जा रहा है, इससे बहुत बड़ी फ्लेक्सिबिलिटी आएगी इंडस्ट्री में।
सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय ने आज नई दिल्ली में प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना के अंतर्गत पंजीकृत कारीगरों की ऑनलाइन बाजार पहुंच को बढ़ावा देने के लिए अमेजॉन सेलर सर्विस के साथ समझौता किया। समझौते के तहत विश्वकर्मा कारीगरों को ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर शामिल करने में सुविधा मिलेगी। वहीं मंत्रालय आवश्यक अनुमोदन, पंजीकरण और मंजूरी प्राप्त करने में सहयोग करेगा। मंत्रालय कारीगर पहल के जरिए हस्तनिर्मित उत्पादों को भी बढ़ावा देगा। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने कहा है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का विवेकपूर्ण उपयोग स्वास्थ्य देखभाल क्षेत्र के लिए वरदान साबित हो सकता है। आज नई दिल्ली में भारतीय उद्योग परिसंघ औषध और जीवन विज्ञान सम्मेलन को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि एहतियाती स्वास्थ्य देखभाल सेवाओं के निर्यात से एक प्रमुख स्वास्थ्य सेवा प्रोवाइडर के रूप में भारत की स्थिति मजबूत हुई है। प्रसार भारती ने आकाशवाणी, दूरदर्शन और OTT वेब्स प्लेटफॉर्म पर सामग्री प्रसारित करने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI से बना त्रिलोक नामक संगीत बैंड के साथ कोई समन्वय नहीं किया है। सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री डॉ. एल मुरुगन ने आज राज्यसभा में यह जानकारी दी। उन्होंने कहा कि इस वर्ष दुर्गा नवरात्रि महोत्सव के दौरान वेब्स OTT प्लेटफॉर्म सहित प्रसार भारती नेटवर्क पर AI से बने कुछ भक्ति गीतों का प्रसारण किया गया। श्री मुरुगन ने कहा कि यह बिना किसी मौद्रिक प्रतिबद्धता के पायलट आधार पर किया गया था। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। दिल्ली जल बोर्ड ने बताया है कि भूमिगत जलाशय और बूस्टर पंपिंग स्टेशन की सालाना मरम्मत कार्य के कारण राजधानी के कुछ इलाकों में इस महीने की 16 और 17 तारीख को पानी की सप्लाई प्रभावित रहेगी। जल बोर्ड के अनुसार मयूर विहार फेज 1 और फेज 3, सूरजमल विहार, विश्वास नगर, कस्तूरबा नगर, योजना विहार, श्रेष्ठ विहार और ज्वाला नगर में 16 तारीख को पानी की सप्लाई प्रभावित रहेगी। वहीं 17 तारीख को डीडीए फ्लैट्स एमआईजी झिलमिल क्षेत्र प्रभावित रहेंगे। जल बोर्ड ने लोगों को सलाह दी है कि वे अपनी जरूरत के हिसाब से पहले से पानी जमा कर लें। पानी के टैंकर टेलीफोन नंबर 1916 पर उपलब्ध रहेंगे। नई दिल्ली नगर पालिका परिषद ने आज नई दिल्ली क्षेत्र की रेजिडेंशियल कॉलोनियों और रोड नेटवर्क पर धूल नियंत्रण और गहन सफाई अभियान चलाया। इस अभियान के अंतर्गत पालिका परिषद की टीमों ने मशीन से सफाई, साइड चैनलों से गाद हटाना, जरूरी मरम्मत का काम और ब्लोअर का उपयोग करके हरे भरे इलाकों का रखरखाव किया। नगर पालिका ने बताया कि इस अभियान का उद्देश्य धूल प्रदूषण को कम करना और आस पड़ोस की पर्यावरण गुणवत्ता को बेहतर बनाना है। दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने आज दिल्ली पुलिस मुख्यालय में आयोजित यूटी लेवल कार्यशाला की अध्यक्षता की। श्री सक्सेना ने बताया कि इस कार्यशाला में पुलिस बल का आधुनिकीकरण, तकनीकी उन्नति, साइबर अपराध, मादक पदार्थ तस्करी और बेहतर सामुदायिक जुड़ाव जैसे विषय शामिल थे। उन्होंने कहा कि एआई आधारित उपकरण और तकनीक के इस्तेमाल से रोजमर्रा की पुलिसिंग में अधिक पारदर्शिता और दक्षता आई है। दिल्ली पुलिस ने ऑपरेशन साइबर हॉक के दूसरे चरण के अंतर्गत 2800 से अधिक लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की है। आज नई दिल्ली में एक प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए दिल्ली पुलिस कमिश्नर सतीश गोलचा ने कहा कि दिल्ली पुलिस ने साइबर अपराध पर अपनी कार्रवाई तेज करते हुए राष्ट्रीय राजधानी में ऑनलाइन धोखाधड़ी गिरोह के खिलाफ सख्त कार्रवाई की है। श्री गोलचा ने बताया कि इस ऑपरेशन के तहत 1100 से अधिक लोगों की गिरफ्तारी और 1700 से अधिक संदिग्ध को नोटिस जारी किए गए हैं। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय गृह मंत्री शिवराज पाटिल का आज लातूर में निधन हो गया। वे 91 वर्ष के थे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला और सूचना तथा प्रसारण राज्य मंत्री डॉ एल मुरुगन ने इन पाटिल के निधन पर गहरा दुख व्यक्त किया। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने भी वरिष्ठ राजनेता शिवराज पाटिल के निधन पर शोक व्यक्त किया। एक सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि शिवराज पाटिल की सादगी, संयम और सार्वजनिक जीवन में गरिमामय उपस्थिति सदैव स्मरणीय रहेगी। श्रीमती गुप्ता ने उनके परिजनों और सभी शुभचिंतकों के प्रति अपनी संवेदनाएं भी प्रकट की। संघ लोक सेवा आयोग ने विशिष्ट दिव्यांगजनों पीडब्ल्यूडी बीडी के लिए परीक्षाओं को अधिक सुलभ बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम की घोषणा की है। आयोग अब यह सुनिश्चित करेगा कि ऐसे प्रत्येक दिव्यांगजन उम्मीदवार को आवेदन पत्र में उल्लेखित उनकी पसंद का केंद्र मिल सके। राजधानी में आज दिन का मौसम सामान्य रहा, हालांकि शाम के समय हल्की ठंड महसूस की जा रही है। मौसम विभाग के अनुसार आज का अधिकतम तापमान 26.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, वहीं न्यूनतम तापमान 8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। मौसम विभाग के अनुसार कल सुबह हल्की धुंध छाए रहने की संभावना है। वहीं कल का अधिकतम तापमान 23 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 11 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का अनुमान है। इस बीच राजधानी में वायु गुणवत्ता आज खराब स्तर पर है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अनुसार शाम 7 बजे तक दिल्ली का वायु गुणवत्ता सूचकांक EQI 363 दर्ज किया गया, जो वायु की बहुत खराब स्थिति को दर्शाता है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने राजधानी में जिलों की संख्या 11 से बढ़ाकर 13 करने की घोषणा की। दिल्ली सरकार ने 1984 के सिख दंगों से पीड़ित 36 परिवारों के निकटतम परिजन को सरकारी नौकरी के नियुक्ति पत्र सौंपे। दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड ने साकेत जी ब्लॉक लाजपत नगर कॉरिडोर पर निर्माण कार्य शुरू किया। नमो भारत ने परिचालन के 2 वर्ष पूरे करते हुए 2 करोड़ यात्राओं की उपलब्धि हासिल की और दिल्ली पुलिस ने ऑपरेशन साइबर हॉक के दूसरे चरण के अंतर्गत 2800 से अधिक लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।